लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। आगमन काल के चौथे रविवार 22 दिसंबर को पोप फ्रांसिस ने वैटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय से भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Oggi il Vangelo ci presenta Maria che dopo l'annuncio dell'angelo visita Elisabetta.
आज सुसमाचार पाठ हमें मरियम के बारे बतलाता है जो स्वर्गदूत के संदेश के बाद अपनी बुजुर्ग रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने जाती है जो योहन बपतिस्ता को जन्म देने वाली है। पोप ने कहा, यह दो महिलाओं का मिलन है जो मातृत्व के असाधारण वरदान के लिए आनंदित हैं। मरियम ने अभी संसार के उद्धारकर्ता यीशु को गर्भ में धारण किया है और एलिजाबेथ अपनी बुजुर्ग अवस्था के बावजूद योहन को अपने गर्भ में ली हुई हैं, जो मसीहा के लिए रास्ता तैयार करेंगे। इस प्रकार उन दोनों के पास खुश होने के लिए बहुत बड़ा कारण है। संत पापा ने कहा, शायद हमें ऐसा लगे कि ऐसे महान चमत्कारों के पात्र हमसे बहुत दूर हैं, जिनकी आम तौर पर हम कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि क्रिसमस से ठीक पहले सुसमाचार प्रचारक हमें जो संदेश देना चाहते हैं, वह अलग है। ईश्वर के मुक्तिदायी कार्य के चमत्कारी चिन्हों पर चिंतन करने से हमें उनसे दूर होने का एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनकी उपस्थिति और हमारे प्रति उनके प्रेम को पहचानने में मदद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हर जीवन के वरदान में, हर बच्चे में। संत पापा ने जोर देते हुए कहा,
नेसुम बम्बिनो ए उन एरो,
कोई भी बच्चा गलत नहीं होता, यह जीवन का वरदान है। संत पापा ने संत मार्था चैपल से विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रांगण में आज भी माताएं अपने बच्चों के साथ होंगी और शायद उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो गर्भवती होंगे। उन्होंने कहा,
Per favore, non restiamo indifferenti alla loro presenza.
कृपया हम उनकी उपस्थिति के प्रति उदासीन ना रहें। आइए हम उनकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित होना सीखें और जैसा कि एलिजाबेथ और मरियम ने किया, हम माताओं को आशीर्वाद दें और जीवन के चमत्कार के लिए ईश्वर की स्तुति करें। संत पापा ने बीते दिनों की याद कर कहा, मुझे यह पसंद है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं दूसरे धर्म प्रांत जाने के लिए बस लेता था, तब जैसे ही एक गर्भवती महिला बस में चढ़ती थी, उसे तुरंत एक सीट दे दी जाती थी। यह एक आशा एवं सम्मान का चिन्ह है। उन्होंने कहा,
Fratelli e sorelle, in questi giorni ci piace creare un clima festoso con luci, addobbi e musiche natalizie.
भाइयों एवं बहनों, इन दिनों हम रोशनी, सजावट और क्रिसमस संगीत के साथ उत्सव का माहौल बनाना पसंद करते हैं, लेकिन हम इससे याद रखें कि जब भी हम किसी ऐसी माँ से मिलें जिसकी गोद में या गर्भ में बच्चा हो, तो हमें खुशी व्यक्त करनी चाहिए और हमें अपने दिल में प्रार्थना करनी एवं एलिजाबेथ की तरह कहनी चाहिए, तू नारियों में सबसे धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल, ताकि हर मातृत्व धन्य हो सके और दुनिया की हर माँ में ईश्वर के नाम का धन्यवाद और महिमा हो सके, जो पुरुषों और महिलाओं को बच्चों को जीवन देने की शक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम जल्दी बालक येशु की प्रतिमा को आशीष प्रदान करेंगे, जिसको आप अपने साथ लाए हैं, मैं भी लाया हूँ। यह मुझे सांता फे के महाधर्मदर्श से मिला है, जिसे इक्वाडोर के आदिवासियों ने बनाया है। इसके बाद उन्होंने चिंतन के लिए प्रेरित करते हुए कहा, हम खुद से पूछें, क्या मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खुद को हमारे जैसे इंसान बनाया ताकि वे पाप को छोड़कर हमारे पूरे अस्तित्व में हिस्सा ले सकें? क्या मैं हर जन्म लेने वाले बच्चे के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ? क्या मैं माँ के गर्भ में गर्भाधान के समय से ही नन्हे बच्चों के जीवन के पौत्र मूल्य का समर्थन करता हूँ और उनका बचाव करता हूँ? क्या मैं हर जन्म लेने वाले बच्चे के लिए प्रभु की स्तुति करता हूँ? जब मैं किसी गर्भवती माँ से मिलता हूँ तो क्या मैं उनके प्रति दया दिखाता हूँ? तब माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए संत पापा ने कहा, नारियों में धन्य मरियम हमें नवजात बालक के जीवन के रहस्य के समक्ष आश्चर्य एवं कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunc siavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
रविवार देवदूत प्रार्थना के समापन पर पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस पर सभी युद्ध मोर्चों पर युद्ध विराम का आह्वान किया तथा मोजम्बिक पीड़ित यूक्रेन और पौत्र भूमि जैसे देशों के लिए शांति आशा और मेल मिलाप का अपना संदेश दोहराया। संत पापा ने कहा,
Seguo sempre con attenzione e preoccupazione le notizie che giungano dal Mozambico.
मैं मोजम्बिक से आने वाली खबरों पर हमेशा ध्यान और चिंता से नजर रखता हूँ और मैं वहाँ के प्रिय लोगों के लिए आशा शांति और मेल मिलाप का अपना संदेश दोहराना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास और सद्दिच्छा से पोषित समाज और आम हित की खोज अविश्वास और मतभेद पर विजय प्राप्त करें। उसके बाद यूक्रेन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा, संकटग्रस्त यूक्रेन में शहरों पर हमले जारी हैं, जिससे कभी कभी स्कूलों अस्पतालों और गिरजाघरों को भी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा, बंदूक के शांत हों और क्रिसमस संगीत गूंजने लगे। क्रिस्ट जयंती सभी युद्ध मौजों पर युद्ध विराम लाए। यूक्रेन में पौत्र भूमि में पूरे मध्य पूर्व में और पूरे विश्व में। उसके बाद भारी दुख के साथ गजा की याद करते हुए संत पापा ने कहा, मैं गजा को बहुत दुख के साथ याद करता हूँ वहाँ की इतनी क्रूरता के बारे में। मशीन गन के निशाने पर बच्चों से लेकर स्कूल और अस्पतालों पर बमबारी के बारे कितनी क्रूरता। तत्पश्चात संत पापा ने रोम एवं विश्व के सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने विंसेंट शंधम बहनों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, आज सुबह मुझे उन बच्चों एवं उनकी माताओं के साथ होने का आनंद मिला जो वैटिकन में विंसेंट शंधम बहनों द्वारा संचालित संत मार्था डिस्पेंसरी में आते हैं। उन्होंने कहा, ये धम बहनें अच्छी हैं। उनमें एक धम बहन सबकी दादी की तरह है, सिस्टर अंतोनियता, जिन्हें वे बड़े प्यार से याद करते हैं। और इन बच्चों ने, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, मेरा दिल खुशी से भर दिया। उन्होंने फिर दोहराया, कोई भी बच्चा गलत नहीं है। उसके बाद बालक येसु की प्रतिमा पर आशीष देते हुए संत पापा ने कहा,
Le statine di Gesù bambino che voi, cari bambini e ragazzi,
और अब मैं बम्बी नेली अर्थात बालक येसु की प्रतिमा को आशीष देता हूँ, मैं भी लाया हूँ। प्रिय बच्चों और युवाओं, आप सभी जो शिशु येसु की प्रतिमा यहाँ लाए हैं और जिन्हें आप घर लौटने पर चरनी में रखेंगे, इस सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को, आपके माता पिता, दादा दादी, आपके परिवारों को सहृदय आशीर्वाद देता हूँ और अपने दादा दादी को ना भूलें। इन दिनों किसी को भी अकेला ना छोड़ा जाए। और अंत में उन्होंने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। जुबली वर्ष और ख्रिस्त जयंती की विशेष तैयारी हेतु हम आगमन काल के चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं और जुबली वर्ष की शुरुआत संत पापा फ्रांसिस 24 दिसंबर शाम को संत पेत्रुस महागिरजा घर के पवित्र द्वार को खोलकर करेंगे। जुबली वर्ष के महत्व को समझाते हुए संत पापा फ्रांसिस ने आज अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जुबली वर्ष हमारे जीवन का जायजा लेने का एक अनमोल समय है, व्यक्तिगत रूप से और समुदाय के रूप में भी। वे चिंतन आत्म मंथन के अवसर हैं और पवित्र आत्मा आज हमसे क्या कह रही है इसे सुनने का मौका है। और संत पापा फ्रांसिस ने जर्मनी के मैग्डेबर्ग में हुए हमले की खबर सुनकर अपनी निराशा व्यक्त की, जहां शुक्रवार शाम को एक कार स्थानीय क्रिसमस बाजार में भीड़ से टकरा गई, जिससे कम से कम 5 लोग की मौत हो गई, जिसमें एक 9 वर्षीय बच्चा भी शामिल था और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित जर्मनी के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को भेजे गए एक टेलीग्राम में संत पापा प्रभावित लोगों के दुख में शामिल हैं और सभी पीड़ितों को अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन देते हैं। टेलीग्राम में उन सभी लोगों का भी उल्लेख है जो इस कठिन समय में पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। संत पापा ने उनकी मदद के लिए उनका धन्यवाद दिया, जबकि उन्होंने मृतकों के लिए प्रार्थना की और उन्हें हमारी आशा मसीह को सौंप दिया और सभी के लिए दिल से दिव्य समर्थन और सांत्वना की प्रार्थना की। और वाटिकन संचार विभाग के प्रीफेक्ट डॉक्टर पाओलो रुफिनी और सुप्रीम शूरवीर पैट्रिक केली ने शनिवार सुबह कोलंबस के शूरवीरों द्वारा वाटिकन को दी गई एक नई मोबाइल संचार वाहन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। परम धर्म पीठीय संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो ने नई मोबाइल संचार वाहन को आशीष दिया। इसके बाद संचार विभाग के प्रीफेक्ट ने शूरवीरों के उपहार के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नए संचार वाहन को जयंती के लिए तैयार रहने के लिए डिजाइन किया गया था। हमारी कैथोलिक कलीसिया के दिल वाटिकन के छवियों को प्रसारित करने के लिए, जयंती के छवियों को साझा करने के लिए और आशा की हमारी तीर्थ यात्रा को बयान करने के लिए एक आशा जो विश्वास में निहित है। उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिनकी उदारता ने संचार वाहन के उपहार में योगदान दिया और कहा कि यह संभव हो सका क्योंकि हम वास्तव में एक दूसरे के सदस्य हैं, क्योंकि हम उस समुदाय में विश्वास करते हैं जो हमें एकजुट करता है, क्योंकि हम सभी संचार के महत्व से अवगत हैं। अपनी ओर से सुप्रीम शूरवीर केली ने कहा कि यह शूरवीरों द्वारा वाटिकन को दी गई चौथी प्रसारण वैन है तथा उन्होंने संत पापा का संदेश, ईसा मसीह के उत्तराधिकारी का संदेश और कलीसिया का संदेश दुनिया भर में पहुंचाने, विशेष रूप से जयंती वर्ष के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, कोलंबस के शूरवीरों के रूप में हम कलीसिया के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हैं, जो मसीह के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उधर यरूशलेम के लैटिन प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला ने रविवार को गाजा में होली फैमिली पल्ली का दौरा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया आपके साथ है। उन्होंने गाजा पट्टी में छोटे ख्रिस्तीय समुदाय से मुलाकात की, जिन्होंने 14 महीने से अधिक समय से पल्ली परिसर में शरण ली हुई है। यह भोर की पहली किरण थी जब प्राधिधर्माध्यक्ष ने इजरायली सैनिकों की सुरक्षा में एयरटेज क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में प्रवेश किया। पिछले 16 मई को उनकी यात्रा के बाद यह दूसरी बार है जब कार्डिनल पिज्जाबाला गाजा में प्रवेश करने और पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेली के नेतृत्व में पल्ली का दौरा करने में कामयाब रहे। कार्डिनल पिज्जाबाला ने क्रिसमस की खुशी के पूर्वानुभव में श्वेत वस्त्र के साथ मनाए जाने वाले पौत्र मिसा की अध्यक्षता की। मिसा के दौरान उन्होंने कई युवाओं को दृढ़ीकरण का संस्कार भी प्रदान किया। गाजा की अपनी यात्रा के बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कार्डिनल पिज्जाबाला बेतलहम में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत एक अन्य पीड़ित समुदाय द्वारा किया जाएगा, जहां वे संत कैथरीन गिरजाघर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। और म्यांमार के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स माउंग बो ने एशियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अपने दूसरे 3 साल के कार्यकाल के समापन पर एक विदाई संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे गहन कृतज्ञता और विनम्रता से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, हमारी एक साथ यात्रा गहन विकास, सीखने और ख्रिस्तीय मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता की यात्रा रही है, जो हमें एकजुट करती है। उन्होंने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने FABC की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्डिनल बो ने कहा, हमारे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हमने अपने मिशन को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक चल रही धर्म सभा यात्रा रही है, जहां हमने सहयोग, संवाद और आपसी समझ की भावना को अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि इसने न केवल FABC के भीतर संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि हमें अपने साझा दृष्टिकोण और उद्देश्य को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में भी मदद की है। इसके अलावा उन्होंने FABC की सार्थक बातचीत में निरंतर भागीदारी की सराहना की, जिसके कारण कई क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही हुई है। अपने संदेश में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी गोवा और दमाओ के महाधर्माध्यक्ष एवं भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्डिनल बो ने कहा, मैं अपने नए नेता के रूप में कार्डिनल फिलिप नेरी का स्वागत करते हुए प्रसन्न हूँ। उनकी बौद्धिक क्षमता, सामाजिक कौशल और भविष्य सूचक नेतृत्व गुण वास्तव में प्रेरणादायक हैं। इस वर्ष के समापन के साथ कार्डिनल बो ने क्रिसमस और समृद्ध नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।